मैं सबसे विदा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग पर निकल जाएंगे। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। घर के लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने क्या कह दिया जो अचानक और संसार के प्रति इतनी विरक्ति मन में भर गई। उन्होंने कहा कि मैं आज रास्ते से आ रहा था तो अपने बाबा से एक छोटी सी बिटिया कह रही थी कि बाबा रात होने को है, अंधेरा घिरने को है और आपने अभी तक एक दीपक नहीं जला दिया रोशनी के लिए, कहो तो मैं आपके लिए एक दीपक जला दूं। तो मुझे लगा कि ठीक ही कह रही है, मेरा पूरा जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आने को है और इसके पहले की मृत्यु की रात का अंधेरा मुझे घेरे, मुझे इसके पहले अपने जीवन में एक दिया तो जला लेना चाहिए, अपने जीवन को रोशन कर। ये छोटी सी बात हमारे अपने जीवन को अगर समझ में आ जाए तो अपने जीवन को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये एक तरह से भीतर की आँख खुल जाना है। हम इस बाह्य जगत को अपनी इन दो आँखों से देखते हैं तो वो पूरा ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता। यदि हमारे अंदर हम एक ऐसी आँख पैदा कर लें जो कि इस संसार की वास्तविकता को हमें दिखा सके, तो फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन जीने का ढंग है, वो परिवर्तित किए बिना नहीं रहे। हम रहेंगे यहीं पर, जिएंगे जैसा हम आज जो भी कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन सोच बदल जाने के बाद फिर जो भी किया जाता है वो कुछ अलग ही होता है। एक अच्छे सोच के साथ फिर हम अपने जीवन को जिए और शांतिपूर्वक सुखपूर्वक अपने जीवन को जिए। ये यदि हमारे मन में भावना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को एनलाइटेड करने के लिए प्रयत्न करें, अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए जीवन को कुछ कोशिश करें। और वो जो भीतर की दृष्टि है, वो जो भीतर की आँख है, वो हमारी खुल जाए, इसके लिए प्रयत्न। अभी तो हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि बस ये दो आँखें देखती रहें, भीतर की आँख खुल ना पाए। एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया राजा के यहाँ पर, राजकुमार की हैसियत से जन्मा वो, ज्योति आए, बड़े बड़े लोग सहज है कि राजा के बेटा उत्पन्न हुआ है तो उसे देखने आएंगे और उसकी जन्म पत्री बनाएंगे तो राजा उन्हें पुरस्कृत करेगा। तो ज्योतिषियों ने जब जन्म पत्री बनाई तो राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि कैसे हैं लक्षण हमारे उत्पन्न हुए पुत्र के। उन्होंने कहा कि और तो कोई मुश्किल नहीं है, एक ही मुश्किल है कि अगर इसकी आँख खुल गई तो ये घर में रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा मतलब क्या कहना चाह रहे, कैसे जीवन भर दिखेगा नहीं सर? बोले नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये देख पाएगा, लेकिन इसके अगर भीतर की आंख खुल गई तो फिर ये घर में नहीं रुके, फिर ये शांति की खोज में, सत्य की खोज में निकल जाए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निकल जाए। तो मालूम राजा जो कि उसका पुत्र जो कि उसका पिता था, उसने कहा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि आँख न खुल पाए। देखो हम भी शायद ऐसा ही उपाय करते हैं जीवन भर की, वो जो अंतरंग की हृदय की आँख है, वो जो जिससे कि वास्तविकता दिखाई पड़ती है संसार की, कभी कभी वो खुल जाती है, कभी कभी अंतर आत्मा कई बातों के लिए हमें उजागर कर देती है, लेकिन हम अंतर आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हैं, अनसुना कर देते हैं और डिनायल ऑफ रियलिटी वास्तविकता से पलायन करने की तो बहुत पुरानी आदत है। वास्तविकता सामने दिखाई पड़ती है तो मुख मोड़ लेते हैं, चलते उसी रास्ते पर हैं जिस पर की अशांति है। पूछते जरूर हैं लोगों से कि शांति का उपाय क्या, करते तो वही है प्रयत्न जो कि हमें स्वयं अशांति में ले जाए। उपाय ज्योतिषियों ने बता दिए कि दो तीन उपाय करना पड़ेंगे, या अगर आप कर लें तो इसकी हृदय की आँख नहीं खुल पाएगी, भीतर की आँख नहीं खुल पाएगी। राजा ने कहा बताओ। बोले पहला उपाय कि इसके पास कोई भी वृद्ध व्यक्ति इसे दिखाई ना पड़े। राजा ने कहा और दूसरा, दूसरी सावधानी ये रखें कि कोई मृत व्यक्ति से दिखाई ना पड़े, वरना भीतर की आंख खुल जाएगी। और तीसरी चीज, उसे अपने बारे में सोचने का वक्त ना मिले, इतना ये एंगेज रहे, इतना व्यस्त रहे कि अपने बारे में सोचने का वक्त ना। ये तीन उपाय हैं, इन तीन को करो तो भीतर की आंख नहीं खुल पाएगी। हम लोगों ने भी ऐसे ही उपाय कर रखे हैं। हमें अगर कोई वृद्धावस्था की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो अंतर्मन तो ये कहता है कि एक दिन इससे मुझे भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन इंटेलिजेंस ही हमारी ये है, हमारी बुद्धि ये कहती है कि नहीं, हम थोड़ी होंगे जब जब किसी के मरण की खबर सुनाई पड़ती है, मृत देह दिखाई पड़ती है, तब भी कभी अपने मरने का भान नहीं होता। और जब वो पुत्र बड़ा हुआ, उसका नाम गौतम बुद्ध रखा गया, और एक दिन जब गौतम बुद्ध के लिए युवाओं की सभा में जाने का निमंत्रण मिला, तब अपने रथ में बैठ करके वे जा रहे थे। व्यवस्थाएं राजा ने पूरी कर दी थी कि कोई भी रास्ते में मृत देह या कि जीर्ण शीर्ण वृद्ध नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। राजभवन में तो सारी व्यवस्थाएं थी, मुरझाया हुआ फूल भी उनके पास नहीं पहुंचता था, कोई वृद्ध व्यक्ति भी उनके पास नहीं पहुंचता था, और उन्हें सारे इंतजाम कर रखे थे, अपने बारे में सोचने का वक्त न मिले, इसलिए शराब और जो भी अम्यूजमेंट के साधन हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के, वो सब उनके चारों तरफ बिखेर दिए गए ताकि वे उसमें एंगेज करें। हमने भी ऐसा ही कर रखा है हमारे अपने जीवन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सारे इंतजाम के बाद भी हमारी आंख न खुले। जिसकी आंख खुली है वो इन सारे इंतजाम के बाद भी खुल जाती है। और जब वे रथ में बैठ करके जा रहे थे, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी एक जर्जर वृद्ध सामने से आता दिखाई पड़ी गया, और उन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है? उसने कहा मनुष्य है, लेकिन मैंने ऐसा मनुष्य से पहले नहीं देखा। ये मनुष्य की वृद्धावस्था को पार कर गया है राजन। अच्छा, क्या हर मनुष्य को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है? अब सारथी क्या कहे, राजकुमार 22 वर्ष तो राजभवन में रहे, आज पहली बार बाहर निकले हैं, ऐसी जिज्ञासाएं इनके मन में होना सहज है। हमें तो अब ऐसी जिज्ञासाएं होती नहीं, बचपन से इन चीजों से गुजरते रहते हैं, तो हमारे मन में कोई इस बात को लेकर के प्रश्न ही नहीं उठता, पर इनकी जिज्ञासाएं बहुत सहज थी। सारथी ने कहा कि हाँ राजन, हर मनुष्य को इस अवस्था से गुजरना पड़ता, लेकिन अगला प्रश्न सारथी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ठीक ठीक बताना, क्या मुझे भी इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा? अब सारथी घबराया। उसने इतना ही कहा कि राजन, आप इसके अपवाद नहीं, यानी आपको भी इस अवस्था से गुजरना। कहते हैं कि इतनी सी बात, थोड़ी थोड़ी भीतर की आंख खुल गई। कहा कि रोको रथ, मैं कहां जाऊं वहां पर युवाओं की सभा में, मैं तो वृद्ध पहले से ही हो गया, लौटाओ रथ। और रथ लौटा तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। जो जो अर्थियां पीछे संभाल के रखी थी, या अभी नहीं निकलेंगी, सब राजा निकल रहे हैं रथ से, वे सब सामने आ गए। और एक अर्थी पर लेते हुए मृत मनुष्य को देख करके फिर मन में आ गया प्रश्न की ये कौन है, इसे चार लोग क्यों उठा करके ले जाए, इसने क्या किया? सारथी ने कहा कि इसने किया कुछ नहीं, इसके जीवन का अंत हो गया, यह मरण के पास। अच्छा, क्या हरेक मनुष्य जीते जीते ऐसे ही एक दिन मरण के पास हो जाता है? हाँ राजकुमार, ऐसे ही हर मनुष्य एक ना एक दिन जीते जीते मरण के पास। तब आखिरी बात पूछता हूँ सारथी तुमसे, क्या मुझे भी इसी तरह एक दिन मरण के पास होना पड़ेगा? सारथी क्या कहे, उसने सिर नीचा कर लिया, जवाब बिना दिए मिल गया कि हाँ एक दिन आपको भी इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं कि वो उसी क्षण रथ से नीचे उतर गए और पांव पैदल और अपने राजभवन में जाकर के और सबसे ऊपर वहां से वहां पहल कदमी करने लगे। सारे लोग बेचैन हैं, घबराए हैं कि क्या हुआ युवराज को, राजकुमार का मन कैसे परिवर्तित हो। अब तो राजकुमार के पास बहुत सा समय है अपने बारे में सोचने का, और सोचते सोचते उन्होंने विदिन मूवमेंट बहुत जल्दी ये निर्णय ले लिया कि जब एक दिन मुझे वृद्धावस्था से गुजरना है, एक दिन मुझे मरण भी हो जाएगा मेरा, तब फिर मैं इस जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा से मुक्त कैसे हूँ, इसके लिए कोई उपाय किया जा सकता। और यहाँ जो भी हैं उन सबके भी जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा न हो, क्या इसके लिए मैं कोई उपाय कर सकता? खुल गई आँख, अपने और प्राणी मात्र के वास्तविक सुख और शांति की अगर हमें खोज है तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक है। वरना हम तो यहाँ छोटे छोटे से सुखों में संतुष्ट हो जाते हैं, जरा एक चीज मन की मिल जाती है तो फूले नहीं समाते हैं, और जरा एक चीज हमारे मन की नहीं होती तो इतने डिप्रेस होते हैं, इतने ज्यादा निराशा और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि जैसे अपना जीवन व्यर्थ मालूम करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी उपलब्धियाँ वास्तव में अगर जीवन का सुख और शांति है तो वो अवस्था में है जहाँ हमें जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा न भोगनी पड़े, जिससे कि हम ऊपर उठ जाए। सच्चाई तो यही है, प्राप्तव्य भी यही है, पहुँचना भी हमें वही है, प्रयत्न हमारा इसी दिशा में होना चाहिए कि हम अपने जीवन के बारे में विचार करने का थोड़ा सा वक्त निकाल सके रोज, और देख सके कि यहाँ इस संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा किस तरह व्यक्ति झेलता है, और मैं क्या करूँ कि इससे मैं पार हो सकूं। अगर ये सोच हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तो दो ही चीजें करने को शेष कहती हैं, एक तो भगवान का सहारा जो कि हमारे जीवन को ये दृष्टि दे सकता है जिससे कि हम इस पीड़ा से संसार की बच सकें, और दूसरा प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में सद्भाव। आस्था और सद्भाव, ये दो चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, इतनी ऊंचाई दे सकती हैं कि हम हमेशा के लिए इस संसार की पीड़ा से मुक्त होकर अपार आनंद और शांति का अनुभव कर सकते। भगवान के प्रति आस्था किस तरह की होती है इसके बारे में कहीं दूर देखने नहीं जाना है, हमें विरासत में वो मिली हुई, हमें सिर्फ विचार करना है, हमें सिर्फ अतीत को जरा सा अपने सामने स्मरण पटल पर लाना है। हम याद करें कि भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के समय में बलभद्र रामचंद्र जी हुए, उनके अपने जीवन से हम सब परिचित हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनका अपना डिसिप्लिन, वे भी सेल्फ डिसिप्लिन, उनका अपना आत्मानुशासन जीवन को मर्यादित होकर के दिया, और उन पर जब विपत्ति आई, जब सीता जी को हरण करके रावण लंका लेके गया, बीच में समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय करना जरूरी था, सबको मांगे क्या उपाय किया जाए, उस समय भी बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियंस थे, ये नहीं समझना, नल और नील नाम के बहुत बड़े इंजीनियर्स थे उस समय, आपको विश्वास नहीं होगा क्या कभी, क्योंकि आपने एक व्यक्ति से कभी पढ़ा नहीं ना शास्त्रों को, शास्त्रों को हम ऐसा करते हैं कि बस ये बातें जो सब ऐसे लिखी हुई है काम चलाई, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें जो आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो ही कहाँ से, वो इन सूत्रों से हुई है जो हमारे ऋषि और तपस्वियों ने अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किए थे, वो सूत्र आज के प्रयोगशाला में उपकरणों की ऑपरेटर्स की मदद से हम प्रयोग करते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन की प्रयोगशाला के अंदर तपस्या से जो प्रयोग करके जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो निष्कर्ष प्राप्त किए थे, वो है उनको। पुल बनाया जा रहा है रामचंद्र जी के,
और हमारा वर्ष करना Thank you.
तो इस तरह की बातें करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है ना, कर लेंगे फिर कर लेंगे। नहीं ऐसा तो हमेशा से सोचते आएंगे कि कर लेंगे फिर कर लेंगे, आज क्यों नहीं करेंगे, आज ही से क्यों नहीं हम शाम से शुरू करेंगे, अपने मन में आस्था जागृत करेंगे, आज अपने मन में सद्भाव उत्पन्न करेंगे।
लेने से लोग डरते थे, नाम भी उसका ऐसा रख दिया गया था, ओरिजिनल नाम तो कुछ और था, अंगुली माल तो उसका नाम उसके अपने कर्मों की वजह से पड़ गया था। वो क्या करता था कि जो उसकी पकड़ में आ जाता था उसको लूट लेता था, उसके साथ मारपीट करता था और अंत में उसकी दसों उंगलियां हाथ की और दसों उंगलियां पैर की निकाल करके माला ग्रो करके अपने गले में डाल देता था। उसका नाम अंगुली माल रख दिया गया था। लोग उस रास्ते को बदलना पसंद नहीं करते थे जहां वो रहता था, उसका दुखा कोई वहां से भूल बस निकल जाता था तो उसकी यही दुर्गति हो। कैसा लगा उसके बारे में सुनकर कि मिल जाए तो उसको समझाए, समझाए नहीं उसके साथ से करना करें कुछ मारपीट करें पकड़ में आ जाए और अपने भीतर बात करके देखें कि हम कौन कौन से मानव पहले हैं जो कि दूसरे को जीवन को मुश्किल में डाल करके हम चुन पाए, बड़े मुश्किल में लेकिन ना हमारे अपने कपड़े जो हम वेतन के पहन रहे हैं जीवन की एक साड़ी में 450 ग्राम की साड़ी में 15,000 कपड़े में अपने शाम तक उपयोग में आने वाली रक्त हमारे जीवन को जीने के लिए मदद कर रहा है। फिर तो हम अगले माल को बोल रहे हैं कि कहां है ऐसा व्यक्ति है जरा बेकार व्यक्ति सोचेंगे तो तुम हमारे जीवन में कभी सद्भाव आ पाएगा नहीं तो नहीं आ पाएगा। हम तो अपने बच्चे को पहले बच्चे जीवन नाम से बनाने तैयार, हमें तो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ये मुझे सद्भाव नहीं है, ये सद्भावना हो जाएगी जहां हम दूसरे के सुख के लिए अपने अपने को भी जितने दान में तैयार हो जाए, अपने सुख छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वहां ये सद्भाव। एक दिन वहां से गौतम बुद्ध जी निकले, लोगों ने मना किया कि कहां जाते वहां जो माल होता है। अच्छा ये मनुष्य की ओर को ये तो मनुष्य कल्पना होता हो उसको उसने भय इसलिए रखता है क्योंकि वो इंडिया निकाल देता है, मारपीट करता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए आप मर जाए वहां उन्होंने तो जरूर होंगे
हमने फोन से बोलने से बुरा रखा था,
जितने दिन में गरीब रहे हैं, एक दिन जितने कहा कि जाओ गांव में जाओ मिक्सर लेकर के आओ, या वो बताए लोगों ने खत्म के ऊपर चलकर के बढ़िया देना ठीक है Thank you.
Thank you.